वंदना के स्वर जब अंतस से उभरते हैं तो वे पारिजात के पुष्पों का रूप धारण करते हैं। स्तुति की सुरभि से सुरभित इन पुष्पों में गुरुवर विद्यासागर का ही रूप दिखाई देता है। तेरी सूरत से नहीं मिलती किसी की सूरत, तेरी सूरत से नहीं मिलती किसी की सूरत, सारे जहां में हम तस्वीर लिए फिरते हैं। जैसे सूरज की किरणें कमल की पांखुरी को मुखरित कर देती है, वैसे ही गुरु की वाणी शिष्य के भीतर सोए हुए परमात्मा को जगा देती है। बिंदु से बिंदु और क्षुद्र से विराट तक की अंतर यात्रा में गुरु पथ के प्रदीप की तरह पथ प्रदर्शित करते हैं। तभी तो ऐसा लगता है कि हर सागर महासागर नहीं होता, हर सागर महासागर नहीं होता, हर कलश गागर नहीं होता। होते हैं हजारों संत इस दुनिया में, हर संत विद्यासागर नहीं होता।
भव्य जीवों को तीर्थंकरों के पंच कल्याणक मनाने व समोसरण की दिव्य ध्वनि सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता रहा है। कालचक्र के प्रभाव से वर्तमान समय में हिंसा, अराजकता, अन्याय, भ्रष्टाचार जैसा दूषित वातावरण अंधकार रूप में व्याप्त है, किंतु हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें गुरुवर रूप में ऐसे तेज प्रकाश पुंज का सानिध्य प्राप्त है। ऐसे गुरु दर्शन मात्र से मन का कालुष मिट जाए, ऐसी गुरुवाणी जैसे दिव्य ध्वनि, ऐसे गुरु परम पूज्याचार्य श्री ज्ञान सागर जी के परम शिष्य आचार्य श्री विद्यासागर जी के चरणों में सत सत वंदन। आचार्य श्री जी के प्रवचनों का संग्रह प्रस्तुत है। आचार्य श्री जी के प्रवचनों की सीडी प्राप्त करने हेतु संपर्क करें ब्रह्मचारी जी श्री अजित वीर, श्री दिगंबर जैन उदासीन आश्रम, इंदौर, दूरभाष 268275।
पतझड़ न रहे इसलिए बसंत चाहिए, पतझड़ न रहे इसलिए बसंत चाहिए, कुरीतियों का अब तो हमें अंत चाहिए। तंग घना अज्ञानता का छारना है गर, आज विद्यासागर जैसा संत चाहिए।
परम पूज्याचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के प्रवचन का विषय है उत्तम तप।
नमस्तेभ्यः, ओम नमस्तेभ्यः, ओम नमस्तेभ्यः। नमो श्री वर्धमानाय निर्दूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की जय।
चार मास तक लगातार गर्मी का अनुभव जिसने किया, सारी धरती तपी हुई है, वह मृदुतम मिट्टी कठोरता के रूप में परिवर्तित हो गई और उस मिट्टी में कठोरता के कारण पाताल तक कहीं दरारें पड़ गई। मानो वह पृथ्वी प्यासी, भूखी, तपन को सहन नहीं कर पा रही, लेकिन जब तक तपेगी नहीं धरती, तब तक ऊपर से कोई करुणा होने वाले नहीं। बिना तपी भी धरती के ऊपर वर्षा का यदि प्रयोग होता है तो उसका कोई भी मूल्य नहीं। और तपना अनिवार्य है, फिर बाद में वर्षा प्रारंभ होती है। चार माह तपी थी, चार दिन के भीतर भीतर धरती की प्यास, धरती की भूख और उस धरती की कठोरता समाप्त हो जाती है। एक एक कण उसके मिल जाते हैं और धरती वह फूल जाती है और धरती के पेट में जीवी बीज फूल करके अंकुरित होकर के पेड़ और पौधे बन जाते हैं। यह ऋतुमान का परिवर्तन हमें बताता है कि तपन के बाद वर्षा अनिवार्य, तपन के बाद ही भोजन पचता, तपन के बाद ही हम स्वर्ण पाषाण से स्वर्ण को प्राप्त करते हैं। तपन हमें बता रहे हैं आत्मा परमात्मा में तभी ढल सकती है जबकि वह तप रूपी अग्नि में अपने आप को समर्पित कर दे। उस ज्वलन से जिसे डर, उस स्वर्ण की कोई कीमत आंखें नहीं जा सकती। स्वर्ण को कस करके कसौटी के पास जाकर स्वर्ण खराब उतरता, स्वर्ण को तोड़ करके हम उसकी परख कर लेते हैं यह सोना है क्या नहीं, और अंत में स्वर्ण की सही सही परीक्षा हो जाती है। उसको तपन की आग में डालते हैं, उस समय वाले यदि भागने लग जाए, नहीं नहीं मैं तो शुद्ध हूँ, शुद्ध हैं क्या शुद्ध हैं अपने आप ज्ञात हो जाएगा। वह स्वर्ण निखर के आ जाता है, उस तपन को झेल लेता है तप। वर्षा होने के उपरांत पृथ्वी को भीग गई, पृथ्वी कोमल भीतर और बाहर से क्योंकि फूल जाती है और उसमें बीज बिखेर भी देते हैं तो भी वह अंकुर उत्पन्न हो जाता है। वहीं उस धरती पर एक पाषाण खंड था और उसके ऊपर भी वर्षा हुई और उस वर्षा के द्वारा वह भी गीला हुआ और यहाँ तक कि वह उसका एक कण भी शेष नहीं रहा जहाँ पर गीला नहीं हुआ हो। लगा उसके ऊपर भी क्योंकि वह भी काली और वह भी पृथ्वी भी काली, लगा ऐसे किसान को यूं बिखिरता हुआ चला गया। अन्यत्र जो बीज गिरे अंकुरित हो आए और जब वह चार पांच सात आठ दिन के उपरांत आ जाता है तो वहां पर उगा नहीं, क्या करके देखता है क्यों नहीं उगा तो देखता है वह माटी नहीं थी, पाषाण था। तपी तो वही भी थी और दोनों तपे थे, वर्षा निष्पक्ष रूप से दोनों के ऊपर हुई और किसान की भी दृष्टि उस ओर नहीं गई, बीज भी वपन कर दिए गए, बिखेर दिए गए, लेकिन बीज फालतू चले गए। वो किसान पश्चाताप करता है, हमने बीज का सदुपयोग नहीं किया। हम पाषाण से कम नहीं, अनंतानंद सिद्ध परमेश्वर हुए, उनमें अनंत तीर्थंकर हुए, और उन्होंने निष्पक्ष रूप से इस ढाई द्वीप में अपनी धर्मामृत वर्षा की है और हम भीगे अवश्य ऊपर से, लेकिन हम फूले नहीं और हमारे सारे सारे हमारे लिए जो परिश्रम किए उन्होंने वो तो व्यर्थ में चले गए। हम पाषाण खंड हो गए। पाषाण खंड फिर भी ठीक है, पाषाण खंड को यदि धरती धारण करती है तो उसमें भी कुछ न कुछ तथ्य है। उस पाषाण खंड को ले लेता है कोई भी अच्छा शिल्पी और उसको छांट छांट करके भगवान बना देता है तो धरती भी उसके सामने झुकने लग जाती है। धन्य है वो पाषाण खंड, लेकिन हम तो ऐसे पाषाण खंड हैं, न भगवान बन पाए और न ही किसी के लिए कोई धान प्रस्तुत कर पाए। हमारा यह जीवन उस पाषाण खंड से भी गया बीता, हमारा यह जीवन इस धरती से भी गया बीता। हम किस काम के हैं? यदि आत्मा अपने कल्याण के मार्ग पर आरूढ़ हो जाता है तो अपने आप युद्धकृत वह धर्म बरसने लग जाता है। कभी भी पाषाण को लेकर के वर्षा नहीं हुआ करते, वैज्ञानिकों का कहना है पहाड़ों के कारण नहीं, किंतु पहाड़ में जो भीगते हुए वो जो वनस्पति हैं उनके कारण पर्यावरण जो दूषित है वह शांत हो जाता। आज हम ऐसे पाषाण खंड बने, हमारे वजह से वातावरण दूषित ही दूषित होता जा रहा है, विभूषित नहीं हो रहा। वे पाषाण के खंड कहीं भी चले जाते हैं, मकान के नींव में बैठ जाते हैं तो वह बहुत कुछ भवन बन जाता है। और यह चांचनाथ भगवान का मंदिर देखो, गगन को चूम रहा उसके शिखर, और वह धन्य है वो पाषाण खंड। कम से कम सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए, भव्य जीवों की प्राप्ति के लिए वहां पर वह कार्य तो कर रहा, लेकिन हमें देख करके कौन सम्यक दर्शन प्राप्त कर रहा है? हमें देख करके कौन चारित्र की ओर बढ़ रहा है? हमें देख करके आत्मा की अनुभूति कौन कर रहा है? यह हमें देखना चाहिए, यह हमें सोचना चाहिए, अन्यथा यह मनुष्य रूपेण मृगा चरन्ति भूभार होता ये मनुष्याः। ये मनुष्य जिनके पास गुण नहीं, वो मनुष्य जिनके पास दान नहीं है, जो मनुष्य जिनके पास धर्म नहीं है, वो मनुष्य जिनके पास और परोपकारिता नहीं, वो मनुष्य कोई नीति नहीं रखता, मनुष्य रूपेण मृगा चरन्ति वे मनुष्य के आकार तो लिए हुए हैं किंतु वे पशु के समान विचरण कर रहे हैं। धरती भी उनसे डरती है क्योंकि जन्म तो ले लिए इन लोगों ने और धरती ने शरण दी है, लेकिन वह शरण देने वाला सोचता होगा कि धरती का पूत वह वृक्ष माना जाता है, जो धरती का पूर्ण पूत माना जाता है, और वह पूत हमेशा हमेशा उस धरती माँ के लिए खुश करना चाहता है, क्योंकि उसकी छाव में कोई भी आकर के बैठ जाता है तो वह आनंद का अनुभव करता है। इसके माध्यम से धरती का अपने आप ही गौरव माथा ऊपर उठ जाता है। लेकिन हम धरती पर तो हैं, धरती एकेंद्री हैं और पंचेंद्रियां, जैसे ब्रह्मचारी जी ने कहा कि पांच इंद्रियों को धारण करने वाले ये सब मनुष्य हैं। हम किस काम के आ रहे हैं? एकेंद्री तप रहे हैं लेकिन आपके लिए परोपकार कर रहे हैं। आचार्य ज्ञानसागर महाराज ने एक दयोदय चंपू लिखा है, उसमें उन्होंने एक कारिका प्रस्तुत की है। यद्यपि आप लोगों ने उस प्रकार के कारिका बहुत बार सुने होंगे, लेकिन उस कारिका को लेकर के मुझे लगता है कि तप तो वो कर रहे हैं, हम केवल तप के नाम कर रहे हैं। तप तो वो कर रहे हैं, क्या कहते हैं, परोपकाराय नदस्य भाव, परोपकाराय दुहंति गाव, परोपकाराय दुहंति गाव, परोपकाराय नद प्रवाह है, परोपकाराय तरो प्रसूति परोपकाराय सताम विभूति। इसमें चार चरणों में उन्होंने एकेंद्रियों के साथ पशुओं के साथ मनुष्य की भी तुलना कर दी, लेकिन बाद में तुलना के लिए मनुष्य को रखा परोपकार के लिए। नदियां बह रही हैं, बहती बहती चली जा रही हैं और बीच में रुकती नहीं है और सागर में जाकर के मिल जाती हैं। जीवन का हमेशा हमेशा यह प्रवाह लक्ष्य की ओर बढ़ता चले जाए, कहीं किसी मरुभूमि में वह गायब नहीं हो पाती और उन मरुभूमियों को भी चीरते हुए सपन में भी आगे बढ़ते हुए और उस पाषाण खंड से नीचे उतरते हुए भी अंत में जाकर के सागर में मिल जाते हैं। जीवन का लक्ष्य, अंतिम लक्ष्य महासागर जो ज्ञान में मिलना होता है, वह हमारे लिए शिक्षा दे रहा है। दुहंति गावाय गावह परोपकाराय, परोपकार के लिए गायें दूध देती है। रूखी सूखी घास फूस खा करके और आपके लिए मीठा मीठा दूध प्रदान करती है, लेकिन आज तक गाय का यह जीवन कभी भी अपने मीठे दूध को वह पीने का साहस नहीं किया। और हम घास तो सूखे सूखे देते हैं और मीठे दूध की प्रतीक्षा करते हैं। थोड़ा सा भी दूध पतला हो जाता है तो गाय को डांट पड़ जाती है, ये तो पतली दूध देने लगी। आहा, देखो तो सही, तुम पतले पानी तक नहीं दे पा रहे हैं। और पतले दूध की बात कर रहे हो, मीठी आपके पास शब्द तक नहीं और वह हमेशा हमेशा मिठ। ये सब परोपकार के लिए है। आज तक गाय ने अपने इतिहास में बछड़ों को दूध दिया और मनुष्य के लिए दूध दिया। ये गोरस प्रसिद्ध है। गो का अर्थ क्या होता है? गाय होती है। परोपकाराय तरोह प्रसूति, परोपकार के लिए ये पेड़ पौधे आपके सामने खड़े हैं, छाया प्रदान करते हैं, आपकी आंखों की ज्योति के विकास के लिए वे कारण बने हुए हैं। वैज्ञानिकों का यह शोध है, जिसकी आई साइट कमजोर है वह हरे हरे उन वृक्षों की ओर देख ले तो अपने आप ही आंखों में शांति आ जाएगी और आप लोगों को देखने से आंखों में क्लांति आ जाती है। यही तो अंतर, शांति नहीं दुख होने लग जाता। और वे बिल्कुल धूप में खड़े हैं, धूप सहन करते हैं, लेकिन इस जीव का कल्याण हो जाए हमारे वजह से, क्योंकि हम जड़ हैं, क्योंकि हम क्या, हमारे पास कोई पैर नहीं है, ये पैर वाले हैं, भगवान के पास चले जाएंगे, भक्ति कर लेंगे, इतना ही हमारे लिए फल मिल जाएगा। लेकिन भगवान के पास जाकर के ये भक्ति क्या करते हैं? हे भगवान, हमारे यहाँ वर्षा हो, अन्यत्र न हो। ये इस मनुष्य की विशेषता अंतिम चरण में सताम विभूति परोपकाराय कहा। सज्जनों की विभूति, तन मन धन और जो कुछ भी है उपयोग, वह सब कुछ पर के लिए, स्व के लिए नहीं, किंतु स्वार्थ के लिए नहीं, परमार्थ के लिए है। जो कोई भी इसका उपयोग कर लेता है धन्य है, ऐसा जो समझता है उसका मनुष्य जीवन सार्थक है। अन्यथा पशुओं की कोटि में भी या जड़ जो तरु हैं उनकी कोटि में भी हमारा जीवन का मूल्य नहीं आ सके। आज तप की बात आप कर रहे हैं। तप किसको कहते हैं? तप उसको कहते हैं जिसके द्वारा आत्मा तो न तपे किंतु आत्मा के साथ जो चिपकन हुआ है वह तप करके झड़ जाए, झड़ जाए। राग के कारण जो चिपकाया गया है आत्मा के ऊपर, वह इस तप के माध्यम से सारा का सारा गल जाए और धुल जाए। का नाम तप है। आपके पास क्या लगा हुआ है? हम ग्रंथ में देख करके फिर बाद में बताते हैं क्या लगा हुआ है।
गलत बात,
आप में लगा हुआ है और ग्रंथ में उसके संकेत थोड़े ही, आप महसूस नहीं कर पा रहे। परिग्रह कितने हैं, हम ग्रंथ लिखते हैं फिर पढ़ते हैं, 10 हैं, वो एक और गायब हो तो वह पेस मिस्टिंग है, पेस से वह मिस्टिक हो गया। क्या आप लोगों के देखो, ये ध्यान रखना, दोष प्रेस के ऊपर है और मिस्टेक अपना है। बहुत मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग अपना ज्ञान का प्रयोग या उपयोग भी नहीं कर पा रहे। जो जड़ है उसके ऊपर हम थोप देते हैं, यह काल का दोष है, क्योंकि गलती हो जाना मनुष्य भूल का पुतला है, ये लिखा हुआ है। ये सब बातें सज्जनों के लिए अच्छी नहीं है। भूलना स्वभाव होते हुए भी अपना पुरुषार्थ कहां तक हुआ है इसके बारे में हम कौन हैं और मौन है। हम बल्कि इसको आगे ये करना चाहते हैं कि हमारी कोई भी गलती काल के वजह से सब कुछ हो रहा है। मनुष्य वह प्राणी है जो सब लोगों के दोष को तो निकालता है, लेकिन अपने आप को दोष का कोष बनाते हुए भी वह कहता है कोष भी तो चाहिए दुनिया के लिए, कोष पड़ेगा तभी तो वह अध्ययन कर सकेगा, इसलिए हम कोष तो हैं। कौन से कोष है, इससे क्या मतलब है, हम दोष के कोष हैं, तभी तो भगवान की कीमत, भगवान का मूल्य होगा। हम दोषी हैं और वे निर्दोषी हैं, समझ में नहीं आता। सताम विभूति, सबसे बड़ा धन है सज्जनों का वह ज्ञान, जिस ज्ञान के माध्यम से हजारों हजारों लाखों लाखों व्यक्तियों के लिए दिशाबोध प्राप्त होता है, जिनके माध्यम से अनंतकालीन भटकन 1-5 मिनट नहीं लगता और वह सही रास्ते पर आ जाता है, जिस व्यक्ति के माध्यम से वह अनंतकालीन दुख समाप्त हो जाता है, सुख और दुख की जो भेद रेखा है वह सब समाप्त हो जाते हैं। ये दुख कहां पर होता उत्पन्न, यह विज्ञान के माध्यम से ही हमें प्राप्त होता है। वह ज्ञान धन तप का एक फल है, फलश्रुति है, और वह एक लक्ष्य है। इस तप के माध्यम से हमें वह केवल ज्ञान प्राप्त करना है, लेकिन केवल ज्ञान उसी को प्राप्त होता है जिस व्यक्ति का वह पाषाण हृदय भी पिघल जाता है। उस पाषाण के भीतर जो आत्म तत्व बैठा है वह कंचन होकर के निखर करके बाहर आता है। यह वह तप है जिसके माध्यम से शरीर को भी नहीं तपाना है और जिसके माध्यम से आत्मा को भी नहीं तपाना, क्योंकि आत्मा चेतन है और चूंकि शरीर जड़ है, शरीर के कारण दुख नहीं है, नहीं आत्मा का स्वभाव दुख है, फिर दुख कहां से आ रहा। बीच में वह कर्म चिपका हुआ है जो मोह माना जाता है, उसको जलाना है। आप रोग की चिकित्सा आधुनिक जो होती है ज्ञात होंगे, जैसे कैंसर है, आत्मा को भी नहीं जलाया जाता और ऊपर के शरीर को भी जलाया नहीं जाता और भीतर वहां तक रे पहुंचाई जाती है, जहां पर वह रोग है, रोग की जड़ है, उसको जलाया जाता है। बहुत बार सेक देने के उपरांत थोड़ी सी चमड़ी काली सी पड़ जाती है, यह स्वभाव है, अग्नि जलती है, इर्द गिर्द का वह स्थान धूमिल तो अवश्य हो जाता है और थोड़ी सी वह उसको साफ कर दो तो वह अपना साफ हो जाता है। उसमें कौन सी शक्ति है, आत्मा के लिए भी तकलीफ नहीं और चमड़ी भी जलती नहीं और भीतर का रोग समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार तप वह रसायन, वह अग्नि है जिसके माध्यम से जो कर्म हमारे साथ चिपके हुए हैं वो जल जाते हैं और आत्मा पाषाण न रह करके स्वर्ण हो निकल करके आ जाता है। आज तक किसी ने भी किसी मानव ने स्वर्ण खंड जो पाषाण है उसको अपने गले का हार नहीं बनाया। बनाया क्या भैया? नहीं बनाया। स्वर्ण पाषाण कोई गले में बांध लो, क्या बांध रखा है? ये आभरण है। कौन सा आभरण है? गले का नाम क्या है? असली, असली बोलते नहीं, नकली बोलते, असली बोलते। पाषाण खंड असली के रूप में कभी भी नहीं आ सकता, भले ही वह स्वर्ण पाषाण है, किंतु उस पाषाण को जब तपाते हैं वह पाषाण दूर हो जाता और भीतर का स्वर्ण बाहर आ जाता है, तब आप उसके लिए 100 टन सोना समझ करके गले में हार बना करके लगा लेते हैं, तब वह स्वर्ण पाषाण नहीं किंतु स्वर्ण माना जाता, उसको आप बाहर नहीं रखते किंतु आप अपने ट्रेजरी में रखते हैं। उसका मूल्य ज्यादा हो गया, पहले भी था लेकिन आज इसलिए कि दोष से वह मुक्त हो गया। सब दोष धरे रह जाएंगे। आत्मा जब निर्दोष हो जाएगा तो ज्ञात हो जाएगा और आनंद आएगा कि हमारी कमी थी क्या, इस युग की कमी थी या इस परिसर की कमी थी या पर का या अपनी कमी थी, ये ज्ञात हो जाएगा। हमें अपने को तपाना है और आज तप का दिन है। आचार्य कहते हैं हम किसी को तपाना नहीं चाहते। तप का लक्ष्य इच्छा निरोधो तप, इच्छा का निरोध होना ये तप कहलाता है। कोई मांस उपवास करता है और कोई भी प्रतिदिन आहार लेता है, इससे कोई मतलब नहीं। भत्तेवा खमनेवा आवसदेवा पुनो विहारेवा उदिमिवा निबद्धं नेचिद विकदम्य समनम्य। आचार्य कुंदकुंद देव कहते हैं प्रवचन सार में उस श्रमण को संबोधित करते हुए, भोजन हो या उपवास दोनों में साम्य रखो। ये कैसे साम्य रखे? एक जो है मांस उपवास कर रहा है और जो प्रतिदिन भोजन कर रहा है, दोनों में साम्य कैसे? हाँ, दोनों में साम्य है। यह चूंकि शरीर के लिए आवश्यक है, कोई करता है प्रतिदिन आवश्यक है लेता है, लेकिन एक बार लेता है। किसी को मांस के उपरांत लेने की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, उसका शरीर इस नाम पर नाम कर्म से चल रहा आवश्यक, ठीक है, लेकिन दो बार नहीं ले सकता। और एक बार नहीं ले रहा, मांसों पास कर रहा, इसलिए जल्दी जल्दी उसकी मुक्ति होगी, ऐसा कोई नियम नहीं। पूर्व कोटि तक तप करके भी प्रथम स्वर्ग तक चले जाते हैं और अंतर्मुख नहीं लगता, सर्वासिद्धि पहुंच जाते हैं। ऐसा भी है, पक्षपात होगा निश्चित, इसके बिना हो नहीं सकता, ये ऐसा कहा जा सकता और कहते रहेंगे वो, लेकिन उनको ये ज्ञात नहीं है उसका तप का अनुपात क्या है और मेरा क्या है। भत्ते वा खमने वा आवस्ति वा पुनो विहारे वा, मठाधीश भी नहीं बनना तो विहार करते हुए भी नहीं चलना, हमने हजारों किलोमीटर विहार कर दिए, इससे भी कोई मतलब नहीं। आवश्यक है कर लिया, और मुख्य रूप से तप आत्मा का ध्यान करना अथवा इच्छा का निरोध करना, किसी में भी अपनी प्रवृत्ति अहम पूर्वक नहीं करना। भत्ते वा खमने वा आवसदे वा पुनो विहारे वा उदिम्य वा निबद्ध, किसी भी उपाधि के प्रति, किसी भी परिग्रह के प्रति, किसी भी अन्य वस्तु के प्रति किसी भी प्रकार से चिपकन प्रतिबद्धत नहीं रहना। असंप्रक्त जिसको बोलते हैं, सरोवर में जल में कमल रहता है, लेकिन हमेशा हमेशा ये ध्यान रखना, सरोवर में कमल नहीं रहता किंतु सरोवर पर कमल रहता है। पानी में नहीं रहता, एक विशेष मैं बात कहना चाहता हूं, वह कमल कितना होशियार रहता है, कितना होशियार रहता है, वह जलज हो करके भी जल में नहीं रहता किंतु जल पर रहता है। ये कैसी बात है? हाँ, ऐसी ही बात है। मान लीजिए 4 फीट जल है तालाब में और धुआंधार वर्षा हो गई, इतनी वर्षा हो गई, झड़ी लग गई 24 घंटे तक इतनी झड़ी की बस, अब वह तालाब का जल 20 फीट ऊपर आ गया, 20 फीट पर ऊपर आ गया, लेकिन दूसरे दिन 20 फीट यदि जलाया है तो वह कमल भी उस 20 फीट के ऊपर ही रहेगा, नहीं तो ऐसा नहीं कि 20 दिन लग जाए उसको ऊपर आने के लिए, लिफ्ट लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। क्यों? इसी का नाम तो कमल है, जलज हो करके भी जल में नहीं रहता, उसी प्रकार परिग्रहों के बीच में रह करके भी परिग्रह जिसको नहीं छू सकता वह महान तपस्वी माना जाता है। विषयाशा वशाति तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रक्त तपस्वी सप्रशस्यते। वह समंत भद्र महाराज की यह कारिका है, रत्न श्रावकाचार्य में दिया गया है। क्या कहलाता हो? यह कहलाता है तपस्वी, वह कहलाता है जिसके पास आरंभ नहीं, जिसके पास परिग्रह नहीं, जिसके पास विषयों की कोई भी चपेट नहीं है और राग से द्वेष से पक्षपात से ऊपर उठा हुआ रहता है।